अच्छा भाई आगे सबक देखिए भाई किताब पर। वलम्मा कान अल्फिअलु दालन अला मानन फी नफ्सी ही बेअतिबारी माना हु तजमुनी ये आनिल हदसा वकान दालिकल माना मुख्तरिन मा अहदिल अजमिनति सलासती फिल फहमि अन लफ्ज अल्फिअली अखरजहु बिकौली ही गैर मुख्तरिन बि अहदिल अजमिनति सलासती اي غير مقترن مع احد الازمنه الثلاثه في الفهم عن لفظه الدال عليه। गुज़श्ता सबक में हमने हासिल महसूल की बहस के आखिरी दो हिस्से पढ़े थे भाई। पांचवां हिस्सा जो था इस पूरी बहस का, फफी हादल किताबी, ये मैंने बतलाया था एक एतराज का जवाब दे रहे हैं। एतराज ये होता था कि ए साहिब जामी, आपने हमें बताया कि फी नफसी ही की हाज अमीर चाहे कलिमा को राजे करें चाहे माना को राजे करें, दोनों का माल एक ही है, दोनों का मर्जे एक ही है और वो माना का मुस्तकिल बिल मफहूम होना है। यानी फी नफसी ही की हाज अमीर चाहे कलिमा को राजे करें चाहे माना को राजे करें, दोनों सूरतों में माना बनेगा कि वो माना मुस्तकिल बिल मफहूमियत होना चाहिए, यानी मुस्तकिलन लफ्ज से समझ में आना चाहिए भाई। तो इश्काल हुआ कि ए साहिब जामी, जब दोनों का माल एक है तो फिर आपने साहिब काफिया की मुखालिफत क्यों की? साहिब काफिया ने इस जमीर को माना की तरफ लौटाया है तो आप भी क्या कर देते? माना को ही लौटा देते, क्योंकि माल तो दोनों का एक ही है, तो फिर आपने कलिमा की तरफ यह जमीर क्यों राजे की? तो उसका जवाब दिया था साहिब जामी ने कि भाई दरअसल यहां पहले भी एक मरतबा फी नफसीहा का लफ्ज गुजर चुका है, यानी वजह हसर के अंदर, और वहां फी नफसीहा की हाज अमीर कलिमा को राजे थी क्योंकि हाज अमीर मुअन्नस की थी। तो आगे जब तारीफ आई तो वहां पर भी हमें फी नफसीही की हाज अमीर मा मौसूला को राजे करना पड़ी, जो इबारत है कलिमा से, ताकि वजह हसर और तारीफ एक दूसरे के मुखालिफ ना हो जाए भाई, लफ्जों के एतबार से ही। कि वजह हसर में किसको जमीर लौटाई? कलिमा को, तो लिहाजा इसम की तारीफ में भी फी नफसी ही कि हा जमीर किसको लौटानी चाहिए? कलिमा ही को लौटानी चाहिए। और जबकि मुफस्सल जो है उसके अंदर जो साहिब काफिया ने उसकी शरह की ईजाह, उसमें उन्होंने कहा कि जो मुफस्सल में फी नफसी ही की हा जमीर है यह माना को राजे है, इसलिए क्योंकि इससे माकबल में ऐसी कोई इबारत नहीं गुजरी थी जिसमें यह जमीर कलिमा को राजे हो रही हो, जिसकी वजह से यहां पर भी उसको कलिमा की तरफ राजे करना पड़े। लेकिन काफिया में ऐसा था, पहले भी एक जगह फी नफसी ही गुजरा था और दोबारा आया, तो इस पहले में कलिमा को राजे तो दूसरे में भी किसको राजे होनी चाहिए? कलिमा को। और नीज साहिब जामी ने बतलाया कि साहिब काफिया बड़ी प्यारी इबारत लेकर आए हैं काफिया के अंदर, उन्होंने फी नफसी ही में मुजक्कर की जमीर लाए हैं, तो इसमें दोनों एहतेमाल हैं, इसको मां की तरफ भी राजे कर सकते हैं क्योंकि मां का लफ्ज मुजक्कर है अगरचे उससे मुराद कलिमा है, और आप चाहें तो इसको माना की तरफ भी राजे कर सकते हैं और माना का लफ्ज भी मुजक्कर है। तो इसी बात पर मुतनब्बेह करने के लिए इसम की तारीख में जो फी नफसी ही का लफ्ज लाए हैं उसके साथ मुजक्कर जमीर जिक्र की है, ताकि बतला दें कि दोनों एहतेमाल इसमें जारी हो सकते हैं। और उसके बाद आखिरी हिस्सा पढ़ा था हमने हासिल महसूल की बहस का, कि वहां एतराज होता था कि आपकी ये इसम की तारीफ जामिया नहीं, इसलिए क्योंकि इससे असमाय लाजिमतुल इजाफत निकल गए। मैंने बतलाया असमाय लाजिमतुल इजाफत कुछ ऐसे इसम हैं जो हमेशा मुजाफ होकर इस्तेमाल होते हैं, उनके लिए हमेशा मुजाफिले चाहिए, तो उनको क्या कहते हैं? असमाय लाजिमतुल इजाफत, यानी जिनके साथ इजाफत लाजिम है, जब भी उनको इस्तेमाल करना है उनके साथ मुजाफिले को जिक्र करना पड़ेगा, यानी उनके मुतअल्लक को जिक्र करना पड़ेगा। मुजाफिले भी मुजाफ का मुतअल्लक है ना, तो उसके मुतअल्लक को जिक्र करना पड़ेगा। तो मालूम हुआ ये जो असमाय लाजिमतुल इजाफत हैं इनका माना बगैर मुतअल्लक के समझ में ही नहीं आता, उनको भी जिक्र करना पड़ेगा फिर इनका माना समझ में आएगा। तो ये किसकी तरह हो गए? हर्फ की तरह हो गए। तो तो ये फी नफसी ही अपने माना पर दलालत नहीं करते बल्कि फी गैरिहा यानी गैर यानी मुतालक के एतबार से अपने माना पर दलालत करते हैं। तो लिहाजा ये हर्फ की तारीफ में दाखिल हो गए। तो इसम की तारीफ जामिया न रही, कुछ इसम इससे निकल गए, और हर्फ की तारीफ मानिया न रही कि उसके अंदर कुछ इसम ये वाले जो हैं लाजिमतुल इजाफत ये इसम क्या हो गए, इसके अंदर दाखिल हो गए। तो उसका जवाब दिया था कि नहीं भाई, ये जो अस्माए लाजिमतुल इजाफत है ये सिर्फ इस्तेमाल के एतबार से इनके साथ इजाफत लाजिम है, बाकी इनका माना जो है वो मफहूम कुल्ली है, वो इनसे मुस्तकिलन समझ में आ जाता है। जैसे फौक का माना ऊपर, तहत का माना नीचे, कुद्दाम का माना आगे, खल्फ का माना पीछे, तो इनमें से हर एक जो है मफहूम कुल्ली के लिए वजह है। और आप पढ़ चुके हैं कि मफहूम कुल्ली क्या होता है, वो मुस्तकिल बिल मफहूम होता है, मुस्तकिलन समझ में आता है। तो ये इनका माना मुस्तकिल है, मुस्तकिलन इनसे समझ में आ रहा है। हां, आदत अरबों की ये जारी हुई है कि वो हमेशा इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं, हमेशा मुजाफ करके इसके लिए कोई मुजाफिले साथ जिक्र करते हैं। तो ये इस्तेमाल के अंदर ये मुजाफिले के मोहताज हैं, अपना माना बतलाने के अंदर ये मुजाफिले के मोहताज नहीं हैं। और हमेशा अरब इनको मुजाफ करके इस्तेमाल करते हैं और कोई ना कोई मुजाफिले साथ जिक्र करते हैं। वजह यह कि इनकी वजह से गरज यही है। मालूम हुआ गरज जो है वो माना के अलावा भी हो सकती है। तो इन लफ्जों को वजह किया गया माना के लिए, और साथ एक और गरज भी थी, क्या कि इनको हमेशा किस तरह इस्तेमाल करना है, किसी न किसी मुजाफिले के साथ इस्तेमाल करना है। तो इनकी इन खसूसियात को समझने के लिए कि इनको इस मकसद के लिए वजह किया गया है इसलिए इनके साथ मुजाफिले हमेशा जिक्र करते हैं, इनका असल माना समझने के लिए मुजाफिले साथ जिक्र नहीं किया जाता। तो ये लिहाजा इसम ही की तारीफ में दाखिल हैं, ये अपना माना पर खुद दलालत करते हैं, इनका माना फी नफ्स ही होता है, फी गैर ही नहीं होता। तो ये इसम ही की तारीफ में दाखिल हैं, तो इसम की तारीफ जामिया हुई, और ये हर्फ की तारीफ में दाखिल नहीं तो हर्फ की तारीफ मानिया भी है। तो इसम की तारीफ जामे होने के एतबार से और हर्फ की तारीफ माने होने के एतबार से उसमें कोई खलल और कोई खराबी लाजिम नहीं आई। भाई उसके बाद आगे दूसरी कैद आ रही थी, भाई इसम की तारीफ चल रही थी, अल इस्मु मा दल्ला अला मानन फी नफ्सिही गैर मुक्तरिनिन बि अहद अल अज़मिनति सलासती। तो अब उसके बारे में तफसील हमने पढ़ना शुरू की थी कि ये दूसरी कैद क्यों लेकर आए कि इसम का माना तीन जमानों में से किसी जमाने के साथ मिला हुआ ना हो। भाई देखो, इसम की तारीफ ऐसी होनी चाहिए कि इसमें कोई फेल भी दाखिल ना हो और कोई हर्फ भी दाखिल ना हो। तो जब कहा मानन फी नफसी ही, तो इसके जरिए हर्फ निकल गया, क्योंकि उसका माना फी गैर ही होता है, फी नफसी ही नहीं होता, जबकि फेल का माना तो फी नफसी ही होता है, वो अभी भी इसके अंदर दाखिल है। जब अभी भी फेल इस तारीफ के अंदर दाखिल है तो आगे फिर गैर मुख्तरिनिन बि अहद अल अज़मिनति सलासा की कैद लगाकर उस फेल को इसम की तारीफ से निकाल देंगे, क्योंकि फेल के माना के साथ तीन जमानों में से कोई जमाना मिला हुआ होता है। तो जब कह दिया गैर मुख्तरिनिन तो फेल भी निकल जाएगा। भाई यहां फिर मैंने दो तीन चीजें आपको बतलाई थी। एक बतलाया था हदस, हदस का लफ्ज इबारत में आ रहा है। मैंने बतलाया हदस जो है मस्दर को कहते हैं। ये जो मस्दर है या यूं कहें माने मस्दरी जो है, ये इसका अपना अलग वजूद नहीं, ये हमेशा गैर की सिफत बनता है। तो हदस वो माना जो गैर के साथ कायम हो, उसका अपना अलग वजूद ना हो। जर्ब जब भी खारिज में पाई जाएगी वो किसी न किसी जारिब की सिफत होगी, कोई ना कोई जारिब होगा तो जर्ब होगी, वरना जर्ब नहीं हो सकती। शुर्ब के लिए हमेशा कोई ना कोई शारिब चाहिए, कोई ना कोई शारिब होगा तो शुर्ब भी पाया जाएगा, वरना शुर्ब नहीं हो सकता। तो ये मस्दर क्या होते हैं, हमेशा किसी न किसी की सिफत होते हैं। और मैंने ये भी बतलाया था कि खारिज में मस्दर का कोई वजूद नहीं, खारिज में हमें पिटाई करना, देखो ये मस्दर है, ये हमें खारिज में नजर नहीं आता। शुर्ब पीना, खारिज में हमें पीना नजर नहीं आता। हां, खारिज में हमें इस मस्दर से जो हैअत और सूरत हासिल होती है वो हमें नजर आती है। तो खारिज में हमें पिटाई करना नहीं नजर आता, बल्कि इस पिटाई करने से जो सूरत हासिल हुई यानी पिटाई, वो नजर आई। और ये हासिल बिल मस्दर है, जो खारिज में हमें दिखाई देती है ये क्या है, हासिल बे मस्दर, मस्दर से जो सूरत और हैअत हासिल हुई है भाई, तो ये इसको हासिल बिल मस्दर कहते हैं। तो खारिज में हमें पिटाई करना नहीं नजर आता बल्कि क्या नजर आती है, पिटाई। खारिज में हमें दौड़ना नहीं नजर आता बल्कि खारिज में हमें दौड़ नजर आती है। खारिज में हमें चलना नहीं नजर आता बल्कि खारिज में हमें चाल नजर आती है। हां, लेकिन उर्दू में हासिल बिल मस्दर के लिए अलग लफ्ज है। देखो, पिटाई करना अलग है और पिटाई अलग है, दौड़ना अलग है और दौड़ अलग है, चलना अलग है और चाल अलग है। लेकिन अरबी के अंदर वही मस्दर जो है, वही मस्दर का जो लफ्ज है वो मस्दर के लिए भी इस्तेमाल होता है और हासिल बिल मस्दर के लिए भी इस्तेमाल होता है। ज़र्ब का माना पिटाई करना भी और ज़र्ब का माना पिटाई भी जब यह हासिल बिल मस्दर इस्तेमाल हो। इसी तरह फर्र या फिर्रो फिरारन, फिरार का माना दौड़ना भी, मस्दर भी है और हासिल बिल मस्दर के लिए भी यही लफ्ज इस्तेमाल होता है, यानी दौड़ना भी और दौड़ भी। बात समझ में आ गई। उसके बाद मैंने आपको दलालत की किस्में बतलाई थी, एक दलालत मुताबिकी है, एक दलालत तजमुनी और एक दलालत इल्तिजामी। दलालत मुताबिकी यह है कि लफ्ज अपने पूरे माने मौजू लहू पर दलालत करे। जैसे इंसान का लफ्ज किसके लिए वजह है, हैवान नातिक के लिए, तो इंसान का लफ्ज जब भी बोलेंगे पूरा हैवान नातिक हमारे जहन में आ जाता है। तो ये देखो, लफ्ज अपने पूरे माने मौजू लहू पर दलालत कर रहा है, इसको कहते हैं दलालत मुताबिकी। और पूरा हैवान नातिक हमारे जहन में तभी आएगा जब हैवान भी आ जाए और नातिक भी आ जाए। इन्हीं दो से मुरक्कब है ना इंसान, क्या है, इन्हीं दो से मुरक्कब है। हैवान नातिक आपके जहन में आया तो ये कुल है या जुज है, कुल है। और जुज क्या, एक जुज क्या, हैवान, दूसरा जुज क्या, नातिक। तो कुल बगैर जुज के पूरा आ सकता है जहन में, नहीं, कुल कभी जहन में आएगा जब क्या आ जाए, जुज भी आ जाए। तो जब कुल पर दलालत हुई साथ ही किस पर हो गई, जुज पर भी दलालत होगी, क्योंकि कुल जुज के बगैर नहीं होता। जब भी कुल पाया जाएगा उसके अंदर ही क्या आ जाएगा, जुज भी आ जाएगा। जैसे देखो, मसलन मैंने कहा गाड़ी, अब गाड़ी के कितने अज्जा हैं, एक अगला हिस्सा है गाड़ी का, एक उसके अंदर सीटें हैं, एक उसका उसका स्टेयरिंग है गाड़ी का, और गाड़ी के पहिए हैं, गाड़ी की छत है। मैंने जैसे ही कहा गाड़ी, पूरी गाड़ी आपके जहन में आ गई, पहिए भी आए कि नहीं आए जी, सीटें भी आ गई कि नहीं आ गई, छत भी आई कि नहीं भाई, देखा, एक एक जुज भी आ गया। तो कुल जब जहन में आएगा साथ ही जुज भी, यानी यूं कहो कुल पर जब दलालत होगी तो साथ ही जुज पर भी हो जाएगी अगर जुज है। तो मैंने आपको बतलाया था कि जब भी कोई लफ्ज बोला जाए तो अगर उसके तीनों किस्म के मानी आते हैं, मुताबिकी भी, तजमुनी भी और इल्तिजामी भी, यानी उसमें उसके जुज भी है और उसके कोई माना लाजिम भी है, तो तीनों पर इकट्ठी दलालत हो जाती है। हां, इरादा हम उनमें से एक का करते हैं, या हमारा इरादा कुल का होगा या उसके किसी एक जुज का होगा या किसी माना खारिज का हम इरादा करेंगे। और इरादा तभी हो सकता है जब वो दलालत कर रहा हो, अगर दलालत नहीं कर रहा तो इरादा आप कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने मिसाल जिक्र की थी कि बकरी बोलकर आप हाथी का इरादा नहीं कर सकते, क्योंकि बकरी का लफ्ज हाथी पर दलालत ही नहीं कर रहा, इरादा सिर्फ उसी का कर सकते हैं जिस पर वो दलालत कर रहा हो भाई। तो यहां पर इसम की तारीफ में आया कि इसम वो कलिमा है जो दलालत करता है ऐसे माना पर, फी नफसी ही, जो साबित हो अपनी जात के एतबार से। इस माना से कौन सा माना मुराद लिया आपने, माना मुताबिकी मुराद है या माना तजमुनी मुराद है या माना इल्तिजामी मुराद है या मुतलक माना मुराद है जिसमें कोई कैद ना हो। जैसे मैंने मिसाल से वजाहत की थी कि हैवान वो नातिक भी हो सकता है, हैवान वो साहिल भी हो सकता है, हैवान वो नाहिक भी हो सकता है। तो हैवान की कितनी ही किस्में हैं, तमाम किस्में हर एक दूसरी किस्म से अलग है, तो हर एक के लिए अलग फसल होगा, हर एक के लिए अलग फसल होगा। लेकिन कभी कभार लफ्ज़ मुतलक बोला जाता है, मुतलक का इरादा किया जाता है, तो कभी हम हैवान नातिक का इरादा करते हैं तो हैवान नातिक बोलते हैं, कभी हम हैवान साहिल का इरादा करते हैं तो हम हैवान साहिल का लफ्ज बोलते हैं, कभी हम हैवान नाहिक का इरादा करते हैं तो हम हैवान नाहिक का लफ्ज बोलते हैं, और कभी हम मुतलक लफ्ज बोलते हैं, यानी कोई खास हैवान मुराद नहीं होता। मसलन हैवान बोला, जब हैवान बोला तो चाहे हैवान नातिक हो वो भी इसके अंदर दाखिल, चाहे हैवान साहिल हो वो भी इसके अंदर दाखिल, चाहे हैवान नाहिक हो वो भी इसके अंदर दाखिल है। मसलन मेरे सामने एक इंसान खड़ा है, मैं कहता हूं यह हैवान है, तो मेरा यह कहना सही है। इसी तरह मैं गाय की तरफ इशारा करके कहता हूं यह हैवान है, देखो मेरा यह कहना भी सही। मैं घोड़े के सामने खड़े होकर कहता हूं यह हैवान है, मेरा यह कहना भी सही, क्योंकि मैंने किसका इरादा किया है? मुतलक हैवान का। और यह सब क्या है? हैवान है, चाहे जो भी हो जाए सब क्या है? हैवान, सब इसके अंदर दाखिल हैं। तो इसी तरह एक माना मुताबिकी होता है, एक तजम्मुनी होता है, एक इल्तिजामी होता है, और एक मुतलक माना है। मुतलक माना वो तीनों पर सादिक आता है, वो तीनों पर सादिक आता है। तो कितनी किस्में हो गई माना की? चार किस्में, या माना मुताबिकी होगा, या तजम्मुनी होगा, या इल्तिजामी होगा, या मुतलक होगा। तो यहां कौन सा माना मुराद है? ये जो इस्म की तारीफ में माना का लफ्ज आया भाई, इसलिए क्योंकि इनमें से कोई एक माना भी यहां ठीक नहीं बनता। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि माना से मुराद माना मुताबिकी है, माना मुताबिकी है, तो फिर फी नफसी ही की कैद से हर्फ भी निकल गया, फेल भी निकल गया, क्योंकि फेल का माना मुताबिकी भी फी नफसी ही नहीं होता, फी गैरी ही होता है, क्योंकि वो गैर मुस्तकिल है। मैंने बतलाया था आपको कि फेल इसका माना मुरक्कब है तीन चीजों से, एक इसके अंदर हदस होता है यानी मस्दर, दूसरा जमाना, और तीसरा निस्बत इलल फाइल। तो फेल का माना क्या है? मुरक्कब। और इनमें से हदस ये भी मुस्तकिल है, जमाना ये भी मुस्तकिल है, लेकिन निस्बत इलल फाइल ये तो निस्बत का नाम है, और निस्बत क्या होती है? गैर मुस्तकिल। निस्बत दो चीजों के दरमियान होती है, इसका अपना अलग वजूद नहीं, दो चीजें हैं तो उनमें निस्बत भी है, दो चीजें नहीं तो उनके दरमियान निस्बत भी नहीं है। तो लिहाजा फेल का माना इन तीन चीजों से मुरक्कब है, और इन तीन में से एक गैर मुस्तकिल है, तो यह सारा मजमुआ भी क्या हुआ? गैर मुस्तकिल, क्योंकि नतीजा किसके ताबे होता है? अर्जल ओ अखस के, जो अदना हो, खसीस हो, घटिया हो, उसके ताबे होता है। तो ये निस्बत इलल फाइल ये गैर मुस्तकिल है, ये बाकी दो अज्जा के साथ मिली तो इसने सारे मजमुए को ही क्या बना दिया? गैर मुस्तकिल बना दिया। तो फेल का माने मुताबिकी गैर मुस्तकिल है। अब आइए फिर उस बहस पर, क्या बहस चल रही थी? कि इसम की तारीफ में मानन फी नफसी ही आया, इससे कौन सा माना मुराद है? अगर इसे माना मुताबिकी मुराद लेते हैं, इसम वो कलिमा है जो दलालत करता है ऐसे माना मुताबिकी पर जो अपनी जात के एतबार से हो, ऐसा माना मुताबिकी जो अपनी, यानी ऐसा माना मुताबिकी जो मुस्तकिल हो, फिर तो फेल निकल गया, क्योंकि फेल का माना मुताबिकी तो मुस्तकिल नहीं है। तो जब फेल इसी कैद से निकल गया तो आगे गैरी मुख्तरीनीन कहने की क्या जरूरत है भाई, उस कैद की कोई हाजत ही नहीं। इश्काल समझ में आया। और अगर माना से मुराद माने तजम्मुनी मुराद लेते हो कि इसम ऐसा कलिमा है जो दलालत करता है ऐसे माने तजम्मुनी पर जो मुस्तकिल होता है, तो फिर तो बहुत से इसम भी निकल जाएंगे, वो इसम जिनका जुज ही नहीं होता। जुज होगा तो माने तजमुनी भी हो सकेगा, जुज ही ना हो तो माने तजमुनी क्या? माने तजमुनी कहते ही किसको हैं? जिसमें एक चीज के जुज का इरादा किया जाए भाई। तो फिर तो बहुत से इसम भी इसम की तारीफ से निकल जाएंगे। बात भी समझ में आ रही है कि नहीं? इसम ऐसा कलिमा है जो दलालत करता है ऐसे माने तजमुनी पर जो मुस्तकिल हो, फी नफसी ही हो। तो जो इसम, वो इसम जो बसीत हैं यानी जिनके माना का जुज नहीं है, वो इससे निकल गए, क्योंकि माना से आपने माने तजमुनी का इरादा कर लिया। और या इस माना से मुराद होगा माने इल्तिजामी, लेकिन माने इल्तिजामी मुराद नहीं ले सकते, क्योंकि तारीफात के अंदर माने इल्तिजामी मतरूक है भाई, उसका कोई एतबार नहीं है, क्योंकि जहन उसकी तरफ फौरन मुतवज्जे नहीं होता, क्योंकि वो एक अमरे खारिज पर, एक लाजिम पर दलालत कर रहा है जो उस चीज की हकीकत और माहियत से खारिज होता है। हां, उसके साथ लाजिम होता है। तो माने इल्तिजामी भी यहां मुराद नहीं ले सकते क्योंकि यह तारीफ चल रही है इसम की, और मुतलक माना भी मुराद नहीं ले सकते इसलिए क्योंकि मुतलक का वजूद खारिज में अलग होता ही नहीं है। मुतलक का वजूद हमेशा किसके जिम्मन में होता है? मुकय्यद के जिम्मन में। अकेला हैवान हो इसका खारिज में कोई वजूद नहीं, हैवान जब भी पाया जाएगा वो किसी न किसी मुकय्यद के जिम्मन में होगा, यानी वो हैवान नातिक के जिम्मन में होगा या हैवान साहिल के जिम्मन में होगा या हैवान नाहिक के जिम्मन में होगा। अकेला मुतलक हैवान खारिज में नहीं, तो मुतलक का खारिज में वजूद नहीं होता भाई, वो किसके जिम्मन में पाया जाता है? मुकय्यद के जिम्मन में पाया जाता है। तो माना मुतलक भी मुराद नहीं क्योंकि इसके मुकय्यद क्या क्या हैं? इसम की तारीफ में माना का लफ्ज आया, इससे मुतलक माना भी मुराद नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि मुतलक का वजूद हमेशा किसके जिम्मन में होता है? मुकय्यद। तो मुतलक माना वो या तो माना मुताबिकी के जिम्मन में पाया जाएगा या माना तजम्मुनी के जिम्मन में होगा या माना इल्तिजामी। बात समझ आ रही है? तो मुतलक का अलग वजूद नहीं, वो हमेशा मुकय्यद के जिम्मन में होता है। और माना मुकय्यद कितनी किस्में हैं? माना मुकय्यद की तो तीन ही किस्में हैं, या माना मुताबिकी है या माना तजम्मुनी है या माना इल्तिजामी है। तो मुतलक का वजूद जब भी होगा या वो माना मुताबिकी के अंदर होगा। भाई देखो ना, हैवान नातिक ये मुतलक है मुकय्यद है? मुकय्यद है। और इसी के अंदर हैवान का वजूद भी है या नहीं? जैद हैवान नातिक है लेकिन वो हैवान भी है। घोड़ा क्या है? हैवान साहिल है तो उसके जिमन में हैवान भी है। इसी तरह गधा हैवान नाहिक है लेकिन उसके जिमन में हैवान भी है। गाय हैवान जुखुआर है लेकिन उसके जिमन में हैवान भी है। तो हैवान मुतलक जो होता है किसके जिमन में होता है? मुकय्यद के जिमन में होता है, अलहदा मुतलक का कोई वजूद नहीं होता। तो जब मुतलक माना का आप इरादा करें तो मुतलक का वजूद भी किस में होगा? या वो माने मुताबिकी के अंदर वो मुतलक माना पाया जाएगा या वो माने तजमुनी के अंदर होगा या माने इल्तिजाम। माने इल्तिजामी का तो इरादा मतरूक है, उसको तो छोड़ दें। तो फिर दो ही माना रह गए, कौन से? या माने मुताबिकी या माने, तो वो उसी के उन्हीं के जिमन में पाया जाएगा। और उन दोनों पर तो इश्काल होता था कि माने मुताबिकी भी मुराद नहीं ले सकते वरना तो फेल इसी से निकल जाएगा, और माने तजमुनी भी मुराद नहीं ले सकते क्योंकि बहुत से फिर असमा तारीफ से निकल जाएंगे। तवज्जो है? तो मुतलक माना भी मुराद नहीं ले सकते क्योंकि मुतलक हमेशा मुकय्यद के जिमन में होता है, और जो एतराज मुकय्यद पर होता था वही फिर वो जो मुतलक जो मुकय्यद के जिमन में पाया जाएगा उस पर भी हो जाएगा। मुतलक माना अकेला हो सकता है? किसके जिमन में होगा? या माना मुताबिकी में होगा। जब माना मुताबिकी है तो मुतलक माना भी है। या किसमें होगा? माना तजमुनी में होगा। जब माना तजमुनी है तो मुतलक माना भी है, और माना मुताबिकी भी हम नहीं मुराद ले सकते क्योंकि फेल का माना मुताबिकी मुस्तकिल नहीं होता, और माना तजमुनी भी मुराद नहीं ले सकते यहां पर क्योंकि माना तजमुनी की सूरत में बहुत से इसम जो है वो भी इस तारीफ से खारिज हो जाते हैं। तो मालूम हुआ ये जो माना का लफ्ज आया इसम की तारीफ में, न इसे मुतलक माना मुराद ले सकते हैं, न माना मुताबिकी मुराद ले सकते हैं, और न माना तजमुनी मुराद ले सकते हैं, और माना इल्तिजामी तो वैसे ही मतरूक है। यहां पर इश्काल समझ में? तो उसका जवाब मैंने दिया था कि यहां मुतलक माना मुराद है। क्या मुराद है? मुतलक माना। सुनो तवज्जो से सुनो, अलिस्मुमा दल्ला अला मानन फी नफ्सिही, इसम ऐसा कलिमा है जो दलालत करता है ऐसे माना पर, ऐसे माना, माना के साथ मैंने कोई मुताबिकी या तजमुनी की कैद लगाई नहीं, जो भी हो बस ऐसा माना हो, फी नफ्सी ही हो यानी मुस्तकिल हो, चाहे मुताबिकी हो चाहे तजमुनी हो, जो भी हो मुतलक माना मुराद है ना। जो भी ले आओ वो इसके अंदर दाखिल हो जाएगा, चाहे माने मुताबिकी ले आओ चाहे माने तजमुनी ले आओ। अब फेल भी इसके अंदर दाखिल हो गया। माना से कौन सा माना मुराद लिया? मुतलक। कोई भी माना हो लेकिन होना क्या चाहिए? मुस्तकिल होना चाहिए। तो इसम, इसम अपने माने मुताबिकी के एतबार से मुस्तकिल होता है, और फेल अपने माने तजमुनी यानी हदस के एतबार से मुस्तकिल होता है। तो अब माना से कौन सा माना मुराद दिया? मुतलक माना। ऐसा मुतलक माना जो फी नफ्सी ही हो, क्या माना? यानी माना होना चाहिए और मुस्तकिल होना चाहिए, बस हमारी गरज यह है। फिर जो भी माना हो लेकिन हो क्या? मुस्तकिल। तो अगर एक लफ्ज का माना मुताबिकी मुस्तकिल है वो भी इसमें आ जाएगा, एक लफ्ज का अगर माना तजमुनी मुस्तकिल है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। तो इसम भी इसके अंदर आ गया और फेल भी इसके अंदर आ गया। इसम क्यों दाखिल हुआ? क्योंकि इसम का माना मुताबिकी मुस्तकिल होता है। फेल क्यों दाखिल हुआ? क्योंकि फेल का माना तजमुनी मुस्तकिल होता है। बात समझ में आ गई? तो कोई ऐसा माना हो जो मुस्तकिल हो। अल इस्मु मा दल्ला अला मानन, फिर अब लफ्जों पर गौर करना। अल इस्मु मा दल्ला, इसम वो कलिमा है जो दलालत करता है अला मानन फी नफ्सिही, ऐसे माना पर जो फी नफ्सिही होता है यानी मुस्तकिल होता है। तो हर वो लफ्ज इसके अंदर दाखिल हो गया जिसका माना मुस्तकिल हो, चाहे कोई भी माना हो, चाहे मुताबिकी हो चाहे तजमुनी। तो इसम मुस्तकिल होता है किस एतबार से? माना मुताबिकी के एतबार से। और फेल भी इसके अंदर दाखिल हुआ क्योंकि फेल भी अपने माना के एतबार से मुस्तकिल होता है, लेकिन कौन से माना के एतबार से? तजमुनी के एतबार से। तो माना से कौन सा माना मुराद है? माना से कौन सा माना मुराद है? मुतलक या मुताबिकी या तजमुनी? मुतलक मुराद है। तो इसके अंदर हर वो कलिमा दाखिल हो जाएगा जिसका माना मुस्तकिल हो, चाहे वो जो भी माना हो, चाहे मुताबिकी हो चाहे तजमुनी हो। तो इसमें इसम भी दाखिल हो गए और फेल भी दाखिल हो गए। हां, हर्फ निकल गया क्योंकि उसका माना फी नफ्सी ही नहीं होता बल्कि फी गैरी ही होता है, यानी वो गैर मुस्तकिल होता है। तो फेल अभी भी इसम की तारीफ में दाखिल है। फी नफ्सी ही की कैद से सिर्फ कौन निकला? हर्फ निकला है। नहीं तवज्जो, ना नहीं तवज्जो भाई, एक है इसम, एक है फेल, एक है हर्फ। तारीफ किसकी चल रही है? इसम की। किस किस को निकालना चाहिए? हर्फ को भी निकालना चाहिए और फेल को। तो जब मानन फी नफ्सी ही कहा तो कौन निकल गया? हर्फ निकल गया क्योंकि उसका माना फी नफ्सी ही नहीं होता बल्कि फी गैर ही होता है। आसान लफ्जों में यूं कहो कि हर्फ का माना गैर मुस्तकिल होता है, तो वो निकल गया। और फेल अभी भी नहीं निकला क्योंकि उसका माना तो मुस्तकिल होता है, अगरचे वो माने तजमुनी है लेकिन होता क्या है? मुस्तकिल है। तो अब उसको भी निकालने की जरूरत है कि क्योंकि तारीफ इसम की चल रही है, हमने फेल को भी निकालना है इससे। तो फिर वो गैर मुख्तरिन भी अहद अजमिनती सलासे की कैद के जरिए फेल को भी निकाल देंगे, क्योंकि फेल का माना तो तीन जमानों में से किसी एक जमाने के साथ मिला होता है, जबकि इसम की तारीफ में क्या आ गया कि वो मिला हुआ ना हो तो फेल निकल जाएगा। बात समझ में आ गई? कहते हैं देखिए भाई किताब पर, कहते हैं वलम्मा कानल फ़िअलुद्दालन अला मानन फी नफ्सिही, जब फेल का लफ्ज जो है वो दलालत करता है ऐसे माना पर जो फी नफ्सी ही होता है यानी मुस्तकिल होता है, बेअतबार माना हु तजमुनी, किस एतबार से? अपने माना तजमुनी के एतबार से। फेल ऐसे माना पर दलालत करता है जो मुस्तकिल होता है, किस एतबार से मुस्तकिल होता है? कौन सा माना? माने बेअतबार माना हु तजमुनी, यानी अपने माना तजमुनी के एतबार से। अनिल हदसा, यानी के हदस जो है यानी वो जो मस्तरी माना है, मस्तर है, उसके एतबार से ये मुस्तकिल होता है। इबारत समझ में आ रही है? फिर देख लें तर्जमा, कहते हैं वलम्मा कानल फ़िअलु दालन अला मानन फी नफ्सिही बेअतबारी माना हु तजमुनी ये अनिल हदसा, और जब फेल जो है वो दलालत करता है ऐसे माना पर जो अपनी जात के एतबार से होता है यानी बेअतबारी माना हु तजमुनी, ये अपने माना तजमुनी के एतबार से, यानी वो माना मुस्तकिल होता है। और माने तजमुनी कौन सा माना है? तजमुनी फेल के तो तीन जूज हैं, हदस, जमाना और नस्बत इलल फाइल। किस माना के एतबार से वो, कौन सा माना यहां मुराद है जिसके एतबार से वो मुस्तकिल है? हदस मुराद है। क्या मुराद है भाई? फेल के अंदर हदस भी मुस्तकिल, जमाना भी मुस्तकिल, और निस्बत इलल फाइल वो क्या है? गैर मुस्तकिल है। तो हदस मुराद है यहां पर, जमाना मुराद नहीं है। क्या मुराद है? इन्होंने आपको बतला दिया फेल का माने तजमुनी मुस्तकिल होता है। फेल अपने माने तजमुनी के एतबार से मुस्तकिल है, माने मुताबिकी के एतबार से मुस्तकिल नहीं है। और माने तजमुनी कौन सा मुराद लिया भाई? फेल के माना में तीन चीजें हैं, एक है हदस, एक है जमाना और एक है निस्बत इलल फाइल। निस्बत इलल फाइल तो गैर मुस्तकिल है, वो यहां मुराद नहीं, बल्कि ऐसा माने तजमुनी जो मुस्तकिल हो और वो हदस है। भाई जमाना क्यों नहीं? जमाना भी तो फेल के अंदर है और वो मुस्तकिल है। मुस्तकिल है। वजह यह कि आगे चलकर फेल की तारीफ आएगी, और फेल की तारीफ क्या करेंगे कि फेल वो कलीमा है जो दलालत करता है ऐसे माना पर जो मुस्तकिल हो और तीन जमानों में से किसी एक जमाने के साथ मिला हो। तो वो जो माने मुस्तकिल है, अगर उससे जमाना मुराद ले लें, माने तजमुनी मुराद लेना है ना फेल का, और कौन सा जम मुराद ले लें, जमाना, और आगे क्या है कि वो मिला होता है तीन जमानों में से किसी एक जमाने के साथ, तो माना यह हो जाएगा कि फेल जो है वो दलालत करता है ऐसे जमाने पर जो मुस्तकिल होता है और तीन जमानों में से किसी एक जमाने के साथ मिला होता है। तो जमाना जमाने से मिला होता है या वो हदस जो है वो जमाने के साथ मिला होता है, हदस जो है वो जमाने के साथ मिला हुआ होता है कि वो मसलन मैंने कहा जाराबा, तो वो पिटाई करना किस जमाने में है, जमाने माजी के अंदर है, तो वो हदस जो है माने मस्तरी वो जमाने के साथ मिला हुआ होता है, जमाना जमाने के साथ नहीं मिला हुआ होता। तो इसलिए फेल का जो माने तजमुनी वो यानी वो हदस मुराद है, जमाना मुराद नहीं। बात समझ में आ गई। अब आगे आपको बतलाएंगे कि देखो फेल जो है फेल माने तजमुनी के एतबार से मुस्तकिल है, और कौन सा माने तजमुनी मुराद है, हदस मुराद है। तवज्जो है, फेल किस माना के एतबार से मुस्तकिल है, माने तजमुनी के एतबार से, माने मुताबिकी के एतबार से मुस्तकिल नहीं, और माने तजमुनी भी कौन सा मुराद है, हदस मुराद है। तवज्जो है, और ये जो हदस है जब फेल से हमें समझ में आता है तो अकेला ये हदस समझ में आता है या जमाना भी साथ समझ में आता है। देखो मैंने कहा जराबा, जराबा से आपको जर्ब समझ में आई, हदस यानी मस्तर समझ में आया, लेकिन अकेला नहीं समझ में आया बल्कि साथ जमाना भी समझ में आ गया कि मालूम हुआ ये पिटाई किस जमाने में हुई है, माजी के जमाने में। तवज्जो है, मैं फेले मुजारे ले आता हूं या जरीबू, इससे भी आपको जर्ब समझ में आई, लेकिन जर्ब के साथ जमाना भी है कि यह जर्ब हाल या इस्तकबाल में है। तवज्जो है, या मैं फेले अमर ले आता हूं इजरिब, इससे भी आपको जर्ब समझ में आई और साथ जमाना भी जुड़ा हुआ है कि यह जर्ब किस जमाने में चाहिए, मुस्तकबिल के जमाने में चाहिए। फेले माजी में कौन सा जमाना होता है, गुजरा हुआ। फेले मुजारे में हाल या इस्तकबाल, और फेले अमर के अंदर मुस्तकबिल वाला। तो जब मैंने कहा जराबा तो आपको सिर्फ जर्ब यानी हदस समझ में आया या जमाना भी साथ समझ में आया, या जरीबू जब मैंने कहा तो सिर्फ जर्ब समझ में आई या जमाना हाल या इस्तकबाल भी समझ में आया, जमाना भी समझ में आया। इसरिब कहा तो सिर्फ जर्ब यानी हदस समझ में आया या मुस्तकबिल का जमाना भी समझ में आया, जमाना भी आपको समझ में आया। तो मालूम हुआ फेल जो है वो माने तजमुनी के एतबार से मुस्तकिल होता है, और कौन सा माने तजमुनी, जो हदस है, और नीज ये जो माने तजमुनी है ये फेल से जब मफहूम होता है तो इसके साथ क्या जुड़ा होता है, तीन जमानों में से कोई ना कोई जमाना भी जुड़ा हुआ होता है। किस वक्त, फेल से मफहूम होने में। जराबा से क्या मफहूम हुआ, जर्ब, और यह जर्ब किसके साथ जुड़ी हुई है, जमाने के साथ जुड़ी हुई है यानी जमाने माजी के साथ। यजरिबू से जर मफहूम हुई और यह भी जमाने के साथ जुड़ी हुई है। बात समझ में आ गई। तो अब देखो आगे एक कैद जिक्र करेंगे। यहां तक तो बता दिया इसम की क्या तारीफ की, अलिस्मु मा दल्ला अला मानन फी नफ्सिही, इसम वो कलिमा है जो दलालत करता है ऐसे माना पर जो मुस्तकिल होता है। तो हर्फ निकल गया लेकिन फेल नहीं निकला, क्योंकि फेल का माने तजमुनी भी क्या होता है, मुस्तकिल होता है। इसम माने मुताबिकी के एतबार से मुस्तकिल है और फेल माने तजमुनी के एतबार से मुस्तकिल है। तो अब फेल को भी निकालना चाहते हैं तो अब किस कैद के जरिए निकालेंगे, आगे गैर मुख्तरिन बिअहदिल अज़मिनति सलासा, उसके जरिए इसको निकाल देंगे। बात समझ में आ गई। अब देखिए तर्जमा भाई कहते हैं वलम्मा कानल फ़िअलु दालन अला मानन फी नफ्सिही, और जब फेल दलालत करता है ऐसे माना पर जो फी नफ्सिही होता है यानी मुस्तकिल होता है, बेअतिबारी माना हो तजमुनी, यानी अपने माने तजमुनी के एतबार से वो मुस्तकिल होता है, अनिल हदसा, यानी के हदस भाई। फिर सुनो, जब फेल दलालत करता है जो माने तजमुनी के एतबार से मुस्तकिल होता है, वकान जालिकल माना, और फेल का वो जो माने तजमुनी यानी हदस है मुकतरिनन, वो मिला हुआ होता है, मा अहदिल अजमिनति सलासती, तीन जमानों में से किसी एक जमाने के साथ जुड़ा हुआ होता है, मिला हुआ होता है। कब मिला हुआ होता है? फेल से मफहूम होने में, फेल से सिर्फ हदस समझ में नहीं आता बल्कि उसके साथ जमाना भी मफहूम होता है। तो वो माना जो है, वो माने हदस जो है फेल का मुकतरीनन, वो मिला हुआ होता है, मा अहदिल अजमिनति सलासती, तीन जमानों में से किसी एक जमाने के साथ, फिल फहमी अन लफ्जिल फेली, लफ्ज फेल से मफहूम होने में। लफ्ज फेल से क्या मफहूम हुआ? हदस। और ये हदस किसके साथ जुड़ा हुआ है? जमाने के साथ। जरबा से सिर्फ जरब नहीं समझ में आई बल्कि यह जरब किस जमाने के साथ जुड़ी हुई है? माजी के जमाने के साथ, की पिटाई माजी के जमाने में हुई है, हाल या इस्तकबाल में नहीं हुई। तो लिहाजा अखराजहू, इसको फिर निकाल दिया इस फेल को, अखराजहू बिकौलिही गैर मुक्तरिनिन बिअहदिल अज़मिनति सलासती, तो इसको फिर निकाल दिया मातिन ने बिकौलिही, किस कौल के जरिए? फेल को निकाल दिया इस कैद के जरिए, गैर मुक्तरिनिन बिअहदिल अज़मिनति सलासती, कि वो माना मिला हुआ न हो तीन जमानों में से किसी एक जमाने के साथ। यहां तक बात अच्छी तरह समझ में आ गई। अब बस सिर्फ एक दफा इबारत खूब अच्छी तरह देख लो। कहते हैं वलम्मा कानल फ़िअलु दालन अला मानन फी नफ्सिही बेअतिबारी मानाहु तज़म्मुनी अनिल हदसा, और फिर जब वो दलालत करता है ऐसे माना पर जो मुस्तकिल होता है माने तज़म्मुनी के एतबार से यानी हदस के एतबार से, और ये माने तज़म्मुनी यानी हदस जो है ये मिला हुआ होता है तीन जमानों में से किसी एक जमाने के साथ, फिल फहमी अन लफ्ज़िल फ़िअली, जब ये फेल के लफ्ज से, ये हदस जब फेल के लफ्ज से मफहूम होता है तो उस वक्त ये मिला होता है तीन जमानों में से किसी एक जमाने के साथ, ये मिला होता है। तो लिहाजा अखराजहू, इस फेल को क्या कर दिया? मातिन ने निकाल दिया बिकौलिही, अपने इस कौल के जरिए कि गैर मुक्तरिनिन बिअहदिल अज़मिनति सलासा, कि इसम जो है उसका माना तीन जमानों में से किसी जमाने के साथ मिला हुआ जुड़ा हुआ नहीं होता। देखिए आई गैर मुक्तरिनिन मा अहदिल अज़मिनति सलासती, मतन में आया था बी अहदिल अज़मिनति, शारह आगे फरमा रहे हैं आई गैर मुक्तरिनिन मा अहदिल अज़मिनति सलासा, यहां से सिर्फ इतना बतलाना चाहते हैं कि ये बा बमाने मा के है, ये बा सबबिया वगैरह नहीं है बल्कि किस माना में है? मा के माना में है। ऐ गैर मुक्तरिनिन मा अहदिल अज़मिनति सलासती, यानी इसम का जो वो माना मुस्तकिल है वो तीन जमानों में से किसी एक जमाने के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, जुड़ा हुआ नहीं होता। इसम का माना तीन जमानों में से किसी जमाने के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता। कब? जब उस इसम से वो समझ में आता है, जब इसम से
समझ में आता,
तो उस वक्त वो तीन जमानों में से किसी एक के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो। जरबुन इसम है या फेल है? इसम है। जरबुन का क्या माना? पिटाई करना। तो जरबुन से जब आपको पिटाई करने का माना समझ में आया तो साथ कोई जमाना समझ में आया कि किस जमाने में हुई है ये पिटाई? तो जरबुन से जब आपको पिटाई करने का माना समझ में आया, जरबुन का क्या माना? पिटाई करना जी। आप कोई जमाना क्यों नहीं बोल रहे साथ, कि हाल मुस्तकबिल या माजी? क्योंकि जमाना इसमें है ही नहीं। तो फेल इसम से जब इसम का माना समझ में आता है, यानी यूं कहो इसम के लफ्ज से जब इसम का माना समझ में आ रहा होता है तो उसके साथ कोई जमाना नहीं होता। हां, जमाना अलग आप साथ ला सकते हैं, जरबुन फिल माजी, कि जर पिटाई करना किस जमाने में है? माजी में है। जरबुन फिल हाली, पिटाई करना किस जमाने में है? हाल में है। या जरबुन फिल मुस्तकबिली, पिटाई करना किस जमाने में? मुस्तकबिल के जमाने में। तो आप देखो जरबुन जो है किसी जमाने के साथ जुड़ा है, लेकिन यह पिटाई करना जब जरबुन से मफहूम हो रहा है उस वक्त जमाने से नहीं जुड़ा हुआ बल्कि जमाने के लिए अलग लफ्ज लाना पड़ा आपको, जबकि फेल में अलग लफ्ज नहीं लाना पड़ता। फेल के लफ्ज से ही जब मस्दर समझ में आता है, वो हदस समझ में आता है तो उसके साथ ही जमाना भी समझ में आ जाता है। मैं आपसे कहता हूं जाराबा, इसका तर्जमा करो, तर्जमा करो जाराबा का, मारा उस एक मर्द ने जमाने माजी में। देखा, जमाना भी आप साथ जिक्र कर रहे हैं, जमाना भी इसी लफ्ज से समझ में आ रहा है। और जब मैंने कहा जरबुन का माना बताओ तो आपने क्या तर्जमा किया, पिटाई करना। अब कोई जमाना आप जिक्र नहीं कर रहे क्योंकि जरबुन के लफ्ज से जब इसका माना मफहूम होता है तो उस वक्त सा जमाना मफहूम नहीं होता। हां, ये जर्ब भी किसी न किसी जमाने में होगी लेकिन उस जमाने को बतलाने के लिए आपको अलग लफ्ज साथ जिक्र करना पड़ेगा। इसी जरबुन के लफ्ज से जमाना समझ में नहीं आता। तो यही बयान कर रहे हैं, गैर मुख्तरिनिन मा अहदिल अजमिनति सलासती। इसम का जो माना है वो तीन जमानों में से किसी जमाने के साथ नहीं मिला हुआ होता, किसी जमाने के साथ। आप कहें जरबुन फिल माजी, जरब है किस जमाने में है, माजी में है, तो जरबुन इसम है, तो माना मिल गया यानी इसका माजी के साथ। तो उसका आगे जवाब दे रहे हैं, फिल फहमी अन लफ्ज ही दाली अलैही, कि वो तीन जमानों में से किसी के साथ नहीं जुड़ा होता, वो जो लफ्ज उस पर दलालत कर रहा है यानी इसम का, उस इसम के लफ्ज से जो माना मफहूम हो रहा है, तवज्जो है, वो लफ्ज जो उस माना पर दलालत कर रहा है, इसम की बात चल रही है ना, तो इसम का वो लफ्ज जो क्या कर रहा है, अपने माना पर दलालत कर रहा है, इस इसम के लफ्ज से जो माना मफहूम हो रहा है तो इस वक्त ये किसी जमाने के साथ जुड़ा हुआ नहीं। जरबुन का क्या माना, देखो ये इसम का, ये इसम है जरबुन, और इस ये दलालत कर रहा है जरबुन किस माना पर, पिटाई करने पर, तो इसे पिटाई करने का माना मफहूम हो रहा है। लेकिन जब ये पिटाई करना इसे मफहूम हो रहा है तो साथ कोई जमाना मफहूम नहीं हो रहा, जमाना इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। बात समझ में आ गई, वरना तो इसम भी जमाने के साथ जुड़ जाता है। अभी मैंने मिसाल जिक्र की जरबुन फेल माजी, पिटाई है किस जमाने में, माजी के जमाने में। देखा ये जर्ब किसके साथ जुड़ गई, माजी के जमाने के साथ जुड़ गई है, ये जर्ब माजी के जमाने में है। लेकिन ये जो जमाना जुड़ा जर्ब के साथ, ये इसी लफ्ज जरबुन से मफहूम हुआ या इसके लिए बाकायदा अलग लफ्ज लाना पड़ा, आगे बाकायदा अलग लफ्ज लाना पड़ा। जबकि फेल में ऐसा नहीं होता, फेल से जब माना मफहूम होता है तो साथ ही जमाना जुड़ा हुआ होता है, और इसम के अंदर जब लफ्ज से माना मफहूम होता है तो साथ जमाना जुड़ा हुआ नहीं होता। बात समझ में आ गई, देखिए तर्जमा, ऐ गैर मुख्तरिनिन मा अहदिल अजमिनति सलासति फिल फहमि अन लफ्जिही दाली अलैही, यानी इसम का जो माना है वो मिला हुआ नहीं होता तीन जमानों में से किसी एक जमाने के साथ, फिल फहमि मफहूम होने में, मफहूम होते वक्त, अन लफ्जिही दाली अलैही, वो जो लफ्ज उस पर दलालत कर रहा है, वो लफ्ज जो उस माना पर दलालत कर रहा है। इसम का माना क्या होता है, मुस्तकिल, तो एक लफ्ज है, मसलन देखो ये एक लफ्ज है, जैसे जरबुन, जरबुन एक लफ्ज है, इसका माना मुस्तकिल बिल मफहूम है, यानी ये माना फी नफसी ही है, और नीज ये माना तीन जमानों में से किसी जमाने के साथ जुड़ा हुआ नहीं, यानी इस जरबुन से ये जो पिटाई करने का माना मुस्तकिलन समझ में आ रहा है, ये माना है तो मुस्तकिल, लेकिन जिस वक्त ये जरब से समझ में आ रहा है ये पिटाई करने वाला माना, उस वक्त इसके साथ कोई जमाना मिला हुआ नहीं है। भाई तर्जमा भी समझ में आया कि नहीं, गैर मुख्तरिनिन मा अहदिल अजमिनति सलासति फिल फहमि अन लफ्जिही दाली अलैही, कि वो माना मिला हुआ नहीं होता तीन जमानों में से किसी एक के साथ, फिलफा हमी अन लफ्ज ही अपने लफ्ज से मफहूम होते वक्त, वो लफ्ज अद्दाली अलैही जो इस माना मुस्तकिल पर क्या कर रहा है, दलालत कर रहा है, उससे मफहूम होते वक्त वो किसी जमाने के साथ नहीं जुड़ा होता। फहुआ सिफतुन बाद सिफतिन, जी यहां से तरकीब बयान कर रहे हैं कि हमने आपको बतलाया था मानन फी नफसी ही, इस फी नफसी ही को हमने क्या बनाया था, सिफत बनाया था माना के लिए, अ मानन हासिल इन फी नफसी ही, वो माना जो अपनी जात के एतबार से साबित है, तो फी नफसी ही ये माना की सिफत अव्वल थी, और ये गैर मुख्तरिनिन भी अहदिल अजमिनति सलासा, ये सिफत सानी है, ये सिफत माना मौसूफ फी नफ्स ही सिफत अव्वल और गैर मुख्तरिन बी अहदिल अज़मिनति सलासा, यह क्या है सिफत सानी। और सिफत पर वही एराब आता है जो मौसूफ पर होता है, और माना तो मजरूर था क्योंकि उस पर अला जारा दाखिल था, तो फी नफ्सी ही इसके लिए हमने हासिलिन मजरूर निकाला। इसी तरह यहां भी गैरी मुख्तरिनिन, ये गैरी को मजरूर पढ़ेंगे क्योंकि ये सिफत है माना की और वो भी मजरूर है। तो गोया माना की दो सिफतें आ गईं, एक फी नफ्सी ही और एक गैरी मुख्तरिनिन बी अहदिल अज़मिनति सलासा। तो कहते हैं फहुवा सिफतुन बादा सिफतिन, तो ये एक सिफत के बाद दूसरी सिफत है लिल माना। अच्छा, तो ये एक सिफत के बाद दूसरी सिफत है भाई लिल माना, किसके लिए? माना के लिए। फबिस सिफतिल उला खरजल हर्फ अन हद इस्मी, तो पहली सिफत जो है कौन सी पहली सिफत? फी नफसी ही, उसके जरिए खरजल हर्फ अन हद इस्मी, हर्फ निकल गया इसम की तारीफ से। वबिसानियतिल फ़ेलु, और दूसरी सिफत के जरिए फेल निकल गया इसम की तारीफ से। बात समझ में आ गई अच्छी तरह। अभी फेल के बारे में गुजरा भाई, मैंने आपको बतलाया कि फेल जो है उसका मफहूम मुरक्कब है तीन चीजों से, एक हदस, एक जमाना और एक निस्बत इलल फाइल भाई। और मैंने आपको बतलाया था कि मेरे वालिद मोहतरम शेखुल हदीस व तफसीर हजरत मौलाना मोहम्मद मूसा रूहानी बाजी रहिमहुल्लाहु ताला रहमतं वासिया, ये जो अभी हासिल महसूल की बहस गुजरी इसकी उन्होंने एक नहायत मुफस्सल शरा लिखी है भाई। ये हासिल महसूल की बहस कोई लगभग डेढ़ दो सफे की है, लेकिन इसकी शरा जो वालिद साहब ने लिखी वो तकरीबन 500 सफहात पर मुश्तमिल है भाई अरबी जुबान में। और उसके मुकद्दमे में वालिद साहब रहमतुल्लाह लिखते हैं कि मेरी ये किताब नहव की मुश्किल तरीन किताबों में से है, हर एक इसको नहीं समझ सकेगा, कोई बड़े उलमा हुए, बड़े उलूम के माहिर हुए वही इस शरा को समझ सकेंगे, और वाकई वो बड़ी मुश्किल और पेचीदा किताब है भाई। उस किताब को इंसान पढ़ता है हैरान रह जाता है भाई, ऐसी ऐसी तहकीकात पेश करते हैं जो उससे पहले आपने कहीं नहीं पढ़ी होंगी। वहां पर फेल का भी जिक्र फरमाते हैं, और फेल के बारे में वो छह मजाहिब जिक्र फरमाते हैं। एक मजहब जमहूर का है जो मैंने जिक्र कर दिया कि फेल का माना मुरक्कब होता है कितनी चीजों से, हदस, जमाना और निस्बत इलल फाइल, तो ये जमहूर का मजहब है। इसके अलावा चार और मजाहिब जिक्र फरमाते हैं मुख्तलिफ उलमा के, और फिर छठा मजहब अपना जिक्र फरमाते हैं भाई। छठा मजहब अपना वाले साहब रहमतुल्लाह जिक्र फरमाते हैं, और फरमाते हैं कि फेल जो है, इन्होंने क्या फरमाया, जमहूर क्या कहते हैं कि फेल माने मुताबिकी के एतबार से मुस्तकिल नहीं है, कि फरमाते हैं मेरे नजदीक फेल माने मुताबिकी के एतबार से भी मुस्तकिल है भाई। फेल अपने माने मुताबिकी के एतबार से भी मुस्तकिल है, और नीज आगे लिखते हैं कि मेरे नजदीक फेल का माना चार चीजों से मुरक्कब है, एक हदस, एक जमाना, एक फाइल मुजमल और एक निस्बत इलल फाइल। कितनी चीजें हैं? चार, हदस, जमाना, फाइल मुजमल और निस्बत इलल फाइल। तो फरमाते कि मेरे नजदीक फेल इन चार चीजों से मुरक्कब है, और फेल का माना भी इसम के माना की तरह मुस्तकिल है, और इसम का माना मुस्तकिल था किस एतबार से, माना मुताबिकी के एतबार से, और जमहूर के नजदीक फेल का माना मुस्तकिल है माना तजमुनी के एतबार से, लेकिन फरमाते मेरे नजदीक माना मुताबिकी के एतबार से फेल का माना मुस्तकिल है। कहते हैं बल्कि फेल के माना का इस्तिकलाल इसम से भी बढ़कर है, फेल के माना का मुस्तकिल होना ये इसम से बढ़कर है भाई, बढ़कर है। और फिर इस पर तवील बहस करते हैं और बड़े दलाइल जिक्र करते हैं, कोई तकरीबन 50 के लगभग सफे तक वो इस पर तवील बहस करते हैं, दलाइल जिक्र करते हैं कि मेरे नजदीक फेल का माना जो है इन चार चीजों से मुरक्कब है, तो बड़े कवी दलाइल उसमें वो जिक्र फरमाते हैं भाई। तो वालिद साहब रहमतुल्लाह को अल्लाह ताला ने अजीब उलूम नसीब फरमाए थे। आप उनकी जो भी किताब उठाकर देख लें तो वो उस इलम और फन में इस तरह तकल्लुम करते हैं जैसे कोई उस इलम और फन का मुज्तहिद हो। भाई ऐसे उलमा तारीख इस्लाम में बहुत कम गुजरे हैं। उलमा इस्लाम में आप देखें तो कोई बहुत बड़ा मुहद्दिस नजर आएगा, कोई बहुत बड़ा मुफस्सिर नजर आएगा, कोई बहुत बड़ा सरफी है, कोई बहुत बड़ा नहवी है, कोई बहुत बड़ा मंतिकी है, कोई बहुत बड़ा फलसफी है, कोई बहुत बड़ा उसूली है। लेकिन ऐसे उलमा जो तमाम फनून के अंदर मुज्तहिद की और इमाम की हैसियत रखते हों, ऐसे उलमा आपको तारीख इस्लाम में बहुत कम मिलेंगे। जो तमाम उलूम में मुज्तहिद की हैसियत रखते हों, ऐसे उलमा तारीख इस्लाम में बहुत कम गुजरे हैं। और वालिद साहब रहमहुल्लाह को अल्लाह ताला ने ऐसे ही उलूम नसीब फरमाए थे कि वो हर फन के अंदर मुज्तहिद की हैसियत रखते थे। देखो अब ये फेल की तारीफ, जमहूर क्या फरमाते हैं, फेल का मफहूम मुरक्कब है तीन चीजों से। वालिद साहब फरमा रहे हैं कि मेरे नजदीक फेल का मफहूम मुरक्कब है चार चीजों से भाई, और फिर उस पर बड़ी तवील बहस करते हैं। ये नहीं कि एक मसाला जिक्र कर दिया बल्कि आगे उसके बाकायदा दलाइल जिक्र करते हैं और तवील बहस करते हैं, तो कोई तकरीबन 50 के लगभग सफे तक वो इसी पर बहस करते चले जाते हैं, दलाइल देते चले जाते हैं। तो वालिद साहब रहमतुल्लाह की हर फन और हर इलम में उन्होंने तसानीफ की हैं, और किसी भी फन की उनकी कोई भी किताब उठाकर इंसान देख ले तो यूं मालूम होता है कि इस शख्स की सारी जिंदगी इसी एक फन में गुजरी है, इसीलिए इतनी गहरी बातें कर रहा है भाई। लेकिन जब दूसरे फन को उठाएं तो उसमें भी वही हालत होती है, तीसरे फन को उठाएं तो उसमें भी यही हालत होती है, चौथे फन को उठाएं तो उसमें भी यही हालत होती है। तो ऐसे उलमा तारीख इस्लाम में बहुत कम गुजरे हैं जो हर फन के अंदर मुज्तहिद की हैसियत रखते हों भाई। चुनांचे जैसे मिसाल के तौर पर इल्म मंतिक की तारीफ आप पढ़ते हैं कि मंतिक वो इल्म है जो नजर व फिक्र में गलती से इंसान की हिफाजत करता है। वालिद साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे कि मेरे नजदीक मंतिक की ये तारीफ गलत महज है भाई, बिल्कुल गलत तारीफ है। इल्म मंतिक वो नजर व फिक्र में गलती से आपकी हिफाजत नहीं करता। अगर मंतिक नजर व फिक्र में गलती से हिफाजत करती तो मनातिका के आपस में इख्तलाफात नहीं होने चाहिए थे भाई। जब गलती से हिफाजत हो गई तो हर एक ने ठीक बात कही तो आपस में इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि मनातिका के इख्तलाफात सबसे ज्यादा हैं भाई, सबसे ज्यादा हैं। बल्कि छोटे मंतिकियों के इख्तलाफात को छोड़ें, अगर आप ये कहें कि मंतिकी बाज मंतिकी क्या है, छोटे मंतिकी हैं, मंतिक ने नजर व फिक्र में इनकी गलती से पूरी हिफाजत नहीं की इसलिए इनसे गलतियां हुई, तो कम अज कम जो मंतिक के अइमा हैं, जो मंतिक के बड़े उलमा हैं, कम अज कम उनकी तो गलती से हिफाजत करनी चाहिए थी मंतिक को, लिहाजा उनमें तो इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि मंतिक के अइमा के आपस में बहुत ज्यादा इख्तलाफात हैं भाई। तो फरमाते थे मंतिक की यह तारीफ जो किताबों में मजकूर है यह गलत महज है। फिर फरमाते मेरे नजदीक मंतिक की दुरुस्त तारीफ यह है, अल मंतिक हुआ इल्मुन युअरफु बिही तुरुकुल अबहासी नकज़म व इब्रामन। मंतिक वो इलम है जिसके जरिए आपको बहस करने के तरीके आते हैं, नकज़म व इब्रामन ऐ नफ्यम व इस्बातन, नफी और इस्बात के तौर पर, कि यानी दूसरे की बात की नफी कैसे करनी है और अपनी बात का इस्बात कैसे करना है। मंतिक के जरिए इंसान को बहस करने के तरीके आते हैं कि किस तरह दूसरे से बहस करनी है। चुनांचे जो शख्स इल्म मंतिक जानता होगा उससे बहस करना बड़ा मुश्किल है, आप उसके सामने जो भी बात करें वो सुगरा कुबरा मिलाएगा और आपकी बात को रद्द कर देगा, चाहे वो हक पर हो या हक पर ना हो, चाहे वो हक पर हो या ना हो, वो सुगरा कुबरा मिलाएगा, दलील बनाएगा और आपकी बात को रद्द कर देगा। तो देखा मंतिक के जरिए अपनी बात को साबित करना इंसान सीखता है कि किस तरह अपनी बात साबित करनी है, चाहे हक हो चाहे ना हक हो, लेकिन साबित कैसे करना है वो सीख लेता है, और दूसरे की बात को रद्द कैसे करना है, चाहे हक हो चाहे ना हक हो, उसको रद्द कैसे करना है। तो अल मंतिकु हुआ इल्मुन युअरफु बिही तुरुकुल अबहासी, जिसके जरिए बहसों के तरीके जाने जाते हैं, नफ्यों व इस्बातन, नफी और इस्बात के तौर पर कि दूसरे की बात की नफी कैसे करनी है और अपनी बात का इस्बात कैसे करना है। या फरमाते यूं कहो, अलमंतिकु हुआ इल्मु युअरफु बिही तुरुकुल इस्तिदलाली नफ्यों व इस्बातन। मंतिक वो इलम है जिसके जरिए इंसान इस्तेदलाल का तरीका, दलील बनाने का तरीका सीखता है, नफ्यम व इस्बातन, नफी और इस्बात के तौर पर कि दूसरे की नफी कैसे करनी है दलील बनाकर और अपना इस्बात कैसे करना है इस्तेदलाल करते हुए। तो वो फरमाते हैं कि मेरे नजदीक फेल का मफहूम मुरक्कब है चार चीजों से। और फिर वालिद साहब का कमाल ये कि उनकी किताबें देखें तो उनकी अरबी इतनी फसीह व बलीग है कि जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। वाली साहब के जो तलामिजा बाहर अरब ममालिक में पढ़ने के लिए या काम के सिलसिले में जिनको जाना पड़ता, वो वाली साहब को आकर कभी कभी जिक्र किया करते थे कि उस्ताद जी हमने फला अरब मुल्क में गए हुए थे, एक बड़े आलिम से मुलाकात हुई और उनके सामने हमने उनको आपकी किताब हमारे पास थी अरबी जुबान वाली, तो हमने उनको तोहफे के तौर पर पेश की, तो वो किताब चंद सफे पढ़कर ही वो हैरान रह गए और वो आपके बारे में पूछते रहे कि इतनी फसीह व बलीग अरबी, इतनी फसीह व बलीग अरबी तो आज का अरबी अदीब भी लिखने पर कादिर नहीं है। यह तो वो अंदाज है जो आज से 1000 साल कबल अइम्मा लुगत अरब का अंदाज था, बे इंतहा फसीह व बलीग। भाई अरब के मुहावरात वगैरह इतनी कसरत से उसमें इस्तेमाल करते हैं और फिर एक ही लफ्ज दो या तीन जगह जिक्र हो तो हर जगह उसके लिए अलग अलग लफ्ज लेकर आते हैं। चुनांचे बहुत से, ये एक आध वाकया नहीं, बहुत से उलमा ने ये वाकयात जिक्र किए। आपको भी जब कभी जिंदगी में अगर कभी मौका मिला, हजरत की कोई किताब आपके पास हुई, कोई अरब आलिम आए, आप उसको किताब तोहफे के तौर पर पेश करें, अगर वो हजरत से वाकिफ नहीं होगा तो एक आध सफा पढ़ते ही चौंक उठेगा कि इतनी फसीह और इतनी प्यारी अरबी, समझ में आए। वह अहले जुबान है, वो अपनी जुबान को जानते हैं, जब कमाल की फसाहत और बलागत हो फौरन चंद सत्रों में ही वो महसूस कर लेते हैं भाई और उसका लुत्फ उठाते हैं। चुनांचे बड़े भाई मौलाना जुबैर साहब जब ये उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी मक्का मुकर्रमा में पढ़ रहे थे, वो फरमाते हैं कि हमारे एक उस्ताद थे, वो मस्जिदुल हराम में इमाम भी थे भाई, तो और असातिजा भी थे और एक उस्ताद जो थे वो मस्जिदुल हराम के इमाम थे, तो उनके साथ कहते हैं तबईद ताल्लुक और लगाव था कि ये इमाम हराम भी हैं भाई। तो एक मर्तबा कहते हैं मैं अपने वालिद साहब की कुछ किताबें जो साथ ले गया था वो मैंने इरादा किया कि इमाम हरम को तोहफे के तौर पर देता हूं। चुनांचे जब वो यूनिवर्सिटी में असबाक से फारिग हो गए और वो अब वापसी के लिए गाड़ी की तरफ जा रहे थे भाई, तो रास्ते में एक जगह बरामदे में मैं खड़ा इनका इंतजार कर रहा था कि अभी यहां से गुजरेंगे सबक पढ़ाकर तो मैं उनको ये किताबें पेश करूंगा। चुनांचे जब वो मेरे पास से गुजरने लगे, मैं आगे हुआ, सलाम किया और फिर मैंने वो किताबें हदीये के तौर पर पेश की कि ये कुछ किताबें मैं बतौर हदीया के आपके लिए लेकर आया हूं। इरादा ये था कि किताबें दूंगा, सलाम करूंगा और बस मुलाकात खत्म हो जाएगी। तो वो उन्होंने बड़े खुश होकर किताबें ली और फिर वैसे ही जैसे एक आप इंसान की साहिब मुताला की आदत होती है तो वैसे ही खड़े खड़े वहीं वैसे किताबें खोलकर जैसे एक आध दो चार सत्रों पे वैसे ही नजर डाल लो, तो किताब को थोड़ा सा खोला और कहते हैं दो चार सत्रें वैसे ही नजर डाली तो एकदम ठठक कर बिल्कुल खड़े हो गए और फरमाने लगे कि ये तुम्हारे वालिद साहब ने किताब लिखी है और ये किताब इस जमाने के अंदर लिखी गई है, क्या इस किताब को एक आजमी आलिम ने लिखा है भाई। इस पर भी हैरान हो रहे थे कि इस जमाने में कोई ऐसी अरबी लिख सकता है और फिर कोई अजमी आदमी गैर अरब ऐसी अरबी लिख सकता है। तो कहते हैं वो दो चार छह जो सत्रें या एक आध सफा जो उन्होंने पढ़ा था उस सफे से इतना मुतासिर हुए, आप अंदाजा तो लगाइए। कहते हैं मेरे साथ वो तकरीबन पौना घंटा खड़े रहे और वालिद साहब के अहवाल पूछते रहे। तो देखो पौना घंटा इमाम हरम खड़े हो जाएं भाई, कहां इतने मसरूफ लोग किसी को वक्त दे सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा उन पर असर हुआ कि वो पौना घंटा खड़े होकर हजरत के अहवाल पूछते रहे भाई। तो ये इतनी फसीह व बलीग अरबी उनकी कि इंसान देखकर हैरान रह जाता है भाई। और वालिद साहब की यह फसीह बलीग अरबी इसलिए थी कि एक तो अल्लाह ने उनको इंतहाई कमाल का जहन नसीब फरमाया था, दूसरा उन्होंने तहसील इलम में बहुत ज्यादा मेहनत की थी भाई, हद से ज्यादा मेहनत की थी। वो शब और रोज पढ़ने में मसरूफ रहते थे जब तालिब इलम थे, कहीं इधर उधर घूमने नहीं जाते थे, बल्कि जंगल में एक जगह मुख्तस की हुई थी, जब मदरसे के असबाक सबक खत्म हो जाते तो जंगल में चले जाते और वहां सारा दिन अपने सबक याद किया करते थे भाई। हाफिजा कवि था तो खूब याद कर लेते, हत्ता कि अगले दिन उस्ताद को पूरा सबक किताब की इबारत समेत जुबानी सुनाते थे भाई, बल्कि इबारत किताब का मतन छोड़ें उसके हाशिए भी जुबानी याद कर लेते थे भाई। उनका हाफिजा कवि था, ये सारी इबारतें उनके जहन में महफूज होती चली गईं। ये जितनी इब्तदाई किताबें हैं, ये काफिया, हिदायतुन्नाह, उसूलुशाशी वगैरह, ये सारी किताबें उनको जुबानी याद थी भाई। और इसी तरह तलबा से फरमाते थे कि भाई ये 10 मकामे मुझे कुल हुअल्लाह की तरह याद हैं भाई, 10 मकामे। बल्कि फरमाते कुल हुअल्लाह में भी शायद थोड़ा सा शक हो, मुझे ये अल्हम्दुलिल्लाह की तरह याद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तो हर नमाज में पढ़ना पड़ती है, तो वो तो हर एक को खूब अजबर होती है, तो कहते हैं मुझे अल्हम्दुलिल्लाह की तरह 10 मकामे याद हैं। इसी तरह बहुत से कसीदे अरब शुआरा के, ये सारे उनको अजबर थे, बेहतरीन जबरदस्त शायर थे भाई अरबी जुबान के। उनके कसीदे इंसान पढ़ता है हैरान रह जाता है, इतने फसीह व बलीग कसीदे भाई। तो बतलाना मैं ये चाहता हूं कि तलबा को अरबी किताब की इबारतें जुबानी याद करनी चाहिए। हमारे तलबा अरबी जुबान में ज्यादा माहिर क्यों नहीं होते, क्योंकि सर्फ भी सीख लेते हैं, नह भी सीख लेते हैं, लेकिन अरबी इबारतें याद नहीं होती, उनके जहन में नहीं होती, इसलिए उनके लिए अरबी लिखना मुश्किल होता है। तो हर साल अगर कमजोर तालिब इलम भी हो तो किसी न किसी किताब की हर साल 10-15 सफे पूरे साल में कम अज कम याद कर लिया करे, और फिर रोज दोहराता रहे ताकि भूलें ना। आप खुद देखेंगे, अगर आप भी इस तरीके पर चलेंगे, 1-2 साल के बाद, 3 साल के बाद, आप आराम से अरबी इबारत लिख सकेंगे, अपने इम्तिहानात आप अरबी जुबान में बेहतरीन अंदाज में दे सकेंगे भाई। अल्लाह ताला हम सबको उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए, और उनकी तरह के उलूम हम सबको नसीब फरमाए, और उनकी तरह खिदमत दीन की तौफीक नसीब फरमाए भाई। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।